हरे कृष्णा, याद है पिछले साल भी हम इधर ही राम मंदिर में आए थे ना। ठीक है, पहले रामचंद्र जी के एक श्लोक बोल लेते हैं, सब लोग पीछे दोहराइए। राम राम भद्राव रामचंद्राव वेधसे रघुनाथाव नाथाव सीताय पतये नमः। देखिए भगवान रामचंद्र के नाम दिया गया रामचंद्र, लेकिन दशरथ जी प्रेम से उसको छोटा करके रामा ऐसे बुलाते थे। जैसे लोग एक लंबे नाम को छोटा करके निकनेम बोलते हैं उसको, है ना। जैसे किसका नाम होता है रामकृष्णन होता है तो उसको रमेश बोलते हैं, रामा बोलते हैं, इस तरह। तो ये दशरथ जी बुलाते थे रामा ऐसे, और रामाय राम भद्राय। तो जनता अयोध्या के वो लोग उनको राम भद्र बोलते थे, क्योंकि खास करके जो धार्मिक लोग थे वो भगवान को राम भद्र बोलते थे। क्यों? भद्र का मतलब है ऑस्पिशियसनेस, शुभ, अपने जीवन में शुभ लाने वाले महान पुरुष को हम राम भद्र नाम से पुकारते हैं। और रामचंद्र नाम ये रानियां पुकारती थी, जैसे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, वो रामचंद्रा करके बुलाते थे उनको, क्योंकि भगवान राम के मुखारविंद एक चंद्रमा के बराबर था। जैसे हम लोग राधा वृंदावन चंद्र नाम से पुकारते हैं, और चंद्र में शीतलता है ना, बहुत बड़ी शीतलता। तो वो सब रानियां उनको रामचंद्रा रामचंद्र करके बुलाती थी, क्योंकि उनको देखते ही उनके मन में एक आनंद छा जाता था उनको, भगवान रामचंद्र के मुख को देखते ही उनके चेहरे में मुस्कान, उनके आंख कमल के पंखड़ियों जैसे थे, उनके पूरे चेहरे एक चंद्रमा के बराबर था, शीतलता प्रदान करने वाला था, इसलिए उसको रामचंद्र आए पुकारते थे। और वेद से नाम से पुकारते थे ऋषि मुनिया, जैसे वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, व्यास देव इत्यादि लोग, वो क्या नाम से पुकारते हैं? वेद से। क्योंकि वेद से का मतलब है जो भगवान सब सारे दुनिया के स्रोत हैं, इसलिए उनको वो नाम से पुकारते थे। वेदों में भी ये नाम मिलता है। और रघुनाथाय नाम से पुकारते थे उनके प्रजा, क्योंकि वो रघुकुल के तिलक नहीं तो शिरोमणि माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम पुकारा उन्होंने रघुनाथाय। और भगवान रघुनाथ हैं, लेकिन नाथ भी हैं किसके? गुहा के, सुग्रीव के, हनुमान के, इस तरह उनके अनेक अपने आप को, अनेक लोगों ने विभीषण, ये सब लोगों ने अपने आप को भगवान रामचंद्र के दास माना, इसलिए उनको नाथाय नाम से पुकारते हैं। सीताय पतये नमः, ये भी अयोध्या के प्रजा उनको सीतापति करके पुकारते थे। तो इस तरह एक सुंदर प्रार्थना है भगवान रामचंद्र की। हम लोग कुछ ही दिनों के पहले उधर गए थे, ऋषिकेश और हरिद्वार यात्रा में गए थे हम लोग। तो ऋषिकेश में गंगा एकदम तेजी से बह रही है, एकदम तेजी से, आप देख सकते हैं। जिधर हम लोग ठहरे थे, गंगा के तट में ठहरे थे हम लोग, एक मठ में, तो उधर से पानी बहते हुए देख सकते हैं, इतना प्रवाह है, तेजी से प्रवाह है उसका। तुरंत आपको ये श्लोक याद आएगा, कुंती महारानी का एक श्लोक है, सुनाना आपने, वो क्या बोलती है? तो ये मैं अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहतात अद्धा गंगे बहुघम उदनवती। वो बोलते हैं कि हे भगवान कृष्णा, मेरे मति आपकी ओर गंगा के प्रवाह के समान बहे, और जितना तेज से गंगा बहती है, इस तरह किसी भी तरह के पाबंदी ना होकर, किसी भी तरह पत्थर हो, लकड़ी हो, जो भी बीच में आए उसको भी पार करके, जिस तरह गंगा जी समुद्र की ओर भागती है, इस तरह हमारा चित्त भी आपकी ओर बहे, इस तरह को प्रार्थना करते हैं। तो उधर हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोग बस में और ऊपर गए हिमालय के ऊपर, उधर एक देवप्रयाग है, देवप्रयाग का नाम का स्थान है। उधर भागीरथी और मंदाकिनी दोनों मिलते हैं उधर। भागीरथी देखने में दूध जैसे दिखती है और मंदाकिनी एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसे पानी पूरा देख सकते हैं आप ऐसे, लेकिन दोनों उधर मिलते हैं। उनके संगम के स्थान में हम लोग नहाए थे। तो उधर देवप्रयाग में जाकर नहाकर उधर सात गंगा का अलग अलग प्रवाह जो आते हैं उधर मिलते हैं, उधर संगम बहुत पवित्र स्थान माना जाता है उधर। तो उधर भगवान रामचंद्र जी भी, उन्होंने भी नहाया उसी स्थान पर रावण को मारने के बाद है। और उधर एक मंदिर है, रघुनाथ का मंदिर है। तो हम लोग और ठहरे थे 4-5 दिन और हर एक ब्रह्मचारी को एक एक टॉपिक दिया था उन्होंने। तो जैसे राधा गोपीनाथ प्रभु, गोविंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु, गौरंग प्रभु और मैं और ऐसे अलग अलग भक्त, तो एक एक चरित्र के ऊपर उनको बोलने के लिए बताया गया था ऐसे। तो मुझे टॉपिक दिया रेस्पॉन्सिबल रामचंद्रा, ऐसे टॉपिक दिया था। जो रामचंद्र जो है, जो जिम्मेवार रामचंद्र, ऐसे नाम दिया था। क्योंकि भगवान रामचंद्र की चरित्र को हम देखेंगे, वो इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम होकर सब सारे मनुष्यों को उन्होंने सिखाया कैसे हमारे जीवन जीना चाहिए। हैं ये उसको क्या बोलते हैं, जवाबदारी बोलते हैं, उसका ऑपोजिट मुझे मालूम है लापरवाही है ना, वो मालूम है। जिम्मेदार बोलते हैं क्या, रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदारी बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल। ओहो राइट राइट। तो पहले मैं 2-3 शब्द बोलूंगा उसके संबंध में, उसके बाद आगे हम कृष्ण कथा करेंगे। हैं तो रामचंद्र जी के चरित्र ऐसा है कि आप देखेंगे, जो हम सुनते हैं 2 अध्याय के 14 श्लोक में भगवान बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन देखिए देहनाशन नेता, देखे श्लोक बोलने के तुरंत बाद भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि शीतोष्ण सुख दुख मान अपमान में तुमको समता रखना चाहिए, बोलते हैं ना। तो रामचंद्र जी को संदेश मिला कि पिता दशरथ बुला रहे हैं उनको और उनके कमरे में बुला रहे हैं कुछ तो संदेश देने के लिए। रामचंद्र जी के 3-4 मित्र भी गए उनके साथ। और जब जहां पहुंचे अपने पिताजी के कमरे में, पिताजी बोले कि देखो बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा सफेद बाल निकल रहा है अभी, इसलिए मेरा योजना ऐसा है कि तुमको राजकुमार बनाना चाहता हूँ और तुमको अगले राजा बनाना चाहता हूँ, इस तरह की मेरी इच्छा है। तो मैंने वशिष्ठ जी से पूछ लिया है। इस तरह बोलकर दशरथ जी ने रामचंद्र जी को आलिंगन किए। तो उसके बाद जब रामचंद्र बाहर निकले, उनके मित्र भाग दौड़ कर माता कौशल्या को जाकर संदेश बोल दिया। इतने में सारे शहर में संदेश फैल गया, सब सैकड़ों हजारों लोग गली गली में लोगों का झुंड था, लोग बातचीत कर रहे थे, सब लोग बात कर रहे थे रामचंद्र जी को राजा बनाने वाले हैं ऐसा वैसा करके। तो रामचंद्र जी गए अपने माता के पास दंडवत प्रणाम करने के लिए। सीता को बोला उन्होंने, कौशल्य को बोला, पिताजी ने इसे आदेश दिया है मुझे स्वीकारने के लिए। तो लक्ष्मण भागकर आए उधर, लक्ष्मण को भगवान रामचंद्र ने बोले, देखो लक्ष्मण मुझे राजा बनने के लिए बोला गया है कि मैं कैसे राजा बनूंगा तुम्हारे सहायता के बिना, तो तुमको मेरे साथ रहना पड़ेगा इस तरह शासन करने के लिए, इस तरह लक्ष्मण को बोला। तो इसके बीच में क्या हुआ आपका मालूम है, मंत्रा और कैकेयी के बीच में बातचीत हुआ और कैकेयी को मंत्रा ने घुमा दिया। उसको क्या बोलते हैं, गुमराहट बोलते हैं क्या उसको, गुमराहट बोलते हैं उसको, गुमराह करना। उसके बाद कैकेयी कोप सभा में चली गई, आपको मालूम है, दशरथ को उधर बुलाकर, उधर दशरथ जब आ गए सब हो गया, 2 वरदान मांगा उन्होंने। उसके बाद दशरथ ने वापस बुलाया रामचंद्र जी को। जब रामचंद्र जी आए, दशरथ बोल नहीं पाए उनको क्या बोलना है, तो कहके बोले कि तुम्हारे पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है उनकी, तो तुम चिंता मत करो, मैं बोल दूंगी उनको जो बोलना है मैं बोलूंगी। तो
कहने बोला, देखो राम मैं मेरे पास दो वरदान थे, मैंने दो मांगा है, एक से तुम जंगल चले जाओ और दूसरा मेरा बेटा राजा बनेगा भरत। तो इसको सुनते ही रामचंद्र जी में किसी भी तरह का उनके चेहरे में परिवर्तन नहीं आया, ये बताया गया है। इसको सुनकर ही गांधी जी बहुत प्रभावित हुए थे उनके दिनों में। अरे ऐसा कौन है इस दुनिया में इंसान जिसको बोला जाता है कि कुछ से दो चार घंटे के पहले आपको बोला गया कि आपको अगले राजा बनाने वाले हैं, और दो चार घंटे के बाद बुलाकर बोला जाता है कि तुमको जंगल जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं कि तुमको राजा का पद ही नहीं है, लेकिन साथ साथ आपको जंगल भी जाना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद भी रामचंद्र जी के चेहरे में थोड़ा अभी तनिक भी शोक का रेखा भी दिखाई नहीं दिया। इसके एकदम विरुद्ध रामचंद्र जी ने बोला, हे माता कहके आप मेरे से कुछ आपके आपको मेरे ऊपर कुछ कोप नहीं है ना, आप मेरे से संतुष्ट होना और पिताजी भी मेरे ऊपर संतुष्ट है ना। मेरा एक ही इच्छा है कि माता पिता को कभी भी उनको कुछ किसी भी तरह का शोक नहीं देना, माता पिता को। हाँ आप तो वरिष्ठ हो और मेरी वजह से आपको कुछ दुख नहीं होना चाहिए। हाँ मैं इतना ही इच्छा करता हूँ कि मेरे व्यवहार, मेरे बर्ताव, मेरे कामकाज सब कुछ ऐसे रहे कि आप मेरे से संतुष्ट हो, ऐसे बोले रामचंद्र जी। इतना ही नहीं, रामचंद्र जी ये भी बोले कैकेयी को, माता पिताजी को आपने इस तरह क्यों दुखित किया ये बोलने के लिए, आप ही खुद ही बोल सकती थी, आपके बात सुनकर ही मैं दंगल चले जाता था मैं, ऐसे बोले। तो तुरंत वापस लौटे रामचंद्र जी कौशल्य के पास लौटे, ये इसके बारे में समझाने के लिए ठीक तरह से। तो दंडवत प्रणाम किया माता को और बोला है इस तरह मुझे जंगल जाने के आदेश प्राप्त हुआ है, मैं जंगल जाने वाला हूँ। इसको सुनकर ही कौशल्य रोने लगी। हाँ और उन्होंने बोला कि बेटा तुम पिताजी का बात मानते हो ना, तुमको मेरा बात में मानना पड़ेगा, मैं भी वरिष्ठ हूँ, मैं भी माता हूँ तुम्हारा। ठीक है, पिता ने बोला जंगल जाओ, मैं बोल रही हूँ जंगल मत जाओ, टहर जाओ। हाँ ये मेरी बात है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुमको राजा बनना चाहिए, भरत को राजा बनने दो, लेकिन तुम इधर ही रहो हमारे साथ, तुमको जंगल जाने की क्या जरूरत है, कई कई को समझा देंगे, हैं तुम रह जाओ, ऐसे बोला उन्होंने। तब रामचंद्र बोले, देखो बेटे का कर्तव्य है पिताजी का बात मानना। एक समय की बात है कि रेणुका ने एक गंधर्व को आसमान में उड़ते हुए देखा, पानी में देखा प्रतिबिंब को, एक खूबसूरत गंधर्व था। तो अपने मन में थोड़ा विकार आया उनको कि खूबसूरत है, तो उनके पतिव्रतता में भंग आ गया, जिसके कारण उस दिन मिट्टी को उठाया हाथ में, मिट्टी को उठाते समय गड़ा बन जाता था हर दिन तुरंत, लेकिन पतिव्रतता में भंग आने के कारण गड़ा नहीं बना उस दिन। तो खुले हाथ वापस लौटी घर, समझ गए जमदग्नि अपने ज्ञान चक्षु से, तुरंत उन्होंने बोला अपने बेटों को, है बेटों इसके पतिव्रता में भंग है, मारो इसको, इसके गर्दन काटो। तो अनेक पुत्र थे जो उन्होंने उनकी बात माना नहीं, उन्होंने सोचा कि महापाप है, किया नहीं उनको श्राप मिला कि पिशाच बन जाओ। हाँ लेकिन परशुराम को बोला उन्होंने, परशुराम ने उनके गर्दन काटा। तो उसके बाद पिताजी खुश हो गए परशुराम से, कुछ भी वरदान मांगो तीन वरदान दूंगा तुमको, पहला वरदान मांगा उन्होंने माँ को जिंदा लाओ, हैं पहले, दूसरा वरदान मांगा माता भूल जाए कि मैंने उनको काटा, उनकी गर्दन को काटा, हैं तीसरा वरदान मांगा मेरे भाई जो पिशाच बने उनको सीधा साधा बना दो। तो तीनों के तीन ऐसे वरदान मांगा उन्होंने, सब ठीक ठाक हो गया, किसी को कुछ पता नहीं क्या हुआ। लेकिन रामचंद्र जी ने ये प्रसंग को बोलकर अपनी माता को बोला, देखो बेटे का कर्तव्य है पिताजी के आदेश को मानना, इसलिए पिताजी ने बोला मुझे जंगल जाने की, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा 14 साल के लिए। आप चिंता मत करो माता, 14 साल तो ये क्षण जैसे गुजर जाएगा, आप चिंता मत करो, आ जाऊंगा मैं, आप शांति से रहो, लक्ष्मण है, भरत रहेगा, लक्ष्मण रहेगा इधर, शत्रुघ्न है वो भी आपके बेटे हैं, वो आपकी देखभाल करेंगे, इस तरह बोला। तो कौशल्य फूट फूट कर रोने लगी, वो बोली ठीक है तुमको जंगल जाना ही हो, ठीक है मैं साथ में आ जाती हूँ तुम्हारे साथ, कुकिंग करना पड़ेगा मुझे, तुमको खिलाना पड़ेगा पिलाना पड़ेगा, जंगल में पता नहीं क्या सुविधा होगा, क्या खाओगे तुम, मैं साथ में आ जाती हूँ। तो अब बोले रामचंद्र, देखो माता एक पत्नी होती है उसका धर्म पत्नी का कर्तव्य है पति के साथ ही रहना, पति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये कैके उनको दुखित किया है अपने वरदान मांगकर, और आप भी उनको त्याग कर मेरे साथ आ जाओगी तो मर ही जाएगा बेचारा वो दशरथ। इसलिए पत्नी को, पति जब कठिन परिस्थितियों को झेलता है उस समय उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उस समय मदद करना चाहिए। इस दुनिया में जैसे हमने एक हाल ही में कहानी सुना, ये सत्य कहानी है, ये तो शास्त्र का नहीं है, सही कहानी है। तो एक पति पत्नी है आईटी कंपनी में काम करने वाले, वो पति को कुछ शंका हुआ कि ये पत्नी का बहुत कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं पुरुषों का, तो उसने क्या किया, एक नाटक किया उसने। उसने जाकर अस्पताल में एडमिट हो गया, कोमा में है करके, डॉक्टर को कुछ पैसा भी दिया उसने, बोलो कि मैं कोमा में हूँ, डॉक्टर भी बोल दिया कोमा में। तो एक हफ्ता था कोमा में, वो पत्नी सब घर में सब पैक करके दूसरे लड़के के साथ भाग गई वो, तो एक हफ्ते के बाद कोमा के से बाहर आया, कोमा तो नहीं था उसको, नाटक था वो, लेकिन वो बाहर लौटने के बाद उसको पता चल गया कि उसके पत्नी को उसके ऊपर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, वो भाग गई किसी और के साथ। क्योंकि पत्नी ने सोचा कि कुछ कुछ लोग कोमा से 6 महीने भी नहीं बाहर आते हैं, 3 महीना 6 महीना। तो इस तरह से आजकल के ज़माने में ऐसे होता है करके बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जब मौसम अच्छा होता है लोग साथ देते हैं, जब मौसम अच्छा नहीं है लोग भाग जाते हैं, फायर वेदर फॉल वेदर बोलते हैं। इस तरह अत्रि अनसूया भी सीता को उपदेश दिया जंगल में, अनसूया ने उपदेश दिया सीता को, हे सीते जब पति का क्रूर वाला पति भी हो, अगर गरीब भी पति हो, अगर व्याधिग्रस्त शरीर हो पति को, अगर कुछ बहुत कठिन जटिल परिस्थिति को पार करना होता हो पति को, किसी भी अवस्था में पति को त्यागना नहीं चाहिए, इस तरह उन्होंने उपदेश दी थी। तो सीता ने बोला अत्रि अनसूया को, मेरी माता से मैंने उपदेश सुनी और यही उपदेश मेरे सास से भी मैंने सुना, अभी आप तो आपसे तीसरी बार सुन रही हूँ, अभी रिवर्स हो गया मुझे अच्छी तरह। लेकिन उन्हें बोला कि आपने जो भी बोला सही है, रामचंद्र जैसे महान पुरुष को कौन त्याग सकता है, वो सुंदरता का मूर्तिमान स्वरूप है, गुणों का सर्व सद्गुणों का सागर है, इंद्रियों का संयम है उनकी, उनके हृदय बहुत बड़े विशाल है और करुणा का मूर्ति है, और इस तरह के गुण वाले परम पुरुष जो रामचंद्र जी हैं उनकी संग ये क्षण के लिए भी कौन है इस दुनिया में जो त्याग सकता है, इस तरह सीता ने पूछा था उस समय। तो इस तरह कौशल्या को उन्होंने बोला कि आपको अपने पति दशरथ को छोड़ना नहीं चाहिए, साथ में ही ठहरना चाहिए आपको उनके साथ। तो ये कौशल्या ने सोचा अरे तुम्हारे साथ आ रही हूँ बोला मैंने, उसके लिए तुमने मना कर दिया अभी, क्योंकि पिताजी का वचन पालन करके तुमको बोला ठहरने के लिए उसका भी मना कर दिया, तो अभी मैं बोलती हूँ साथ में आते हूँ उसके लिए मना कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, तुम मेरे से बिछड़ जाओगे, मैं 14 साल कैसे रह पाऊंगी। तो तभी रामचंद्र बोले कि देखिए माता, आप जैसे बड़ों को बड़ों का कर्तव्य आशीर्वाद देना, अगर आप रोएगी तो मेरा 14 साल कैसे ठीक तरह से गुजरेगा, आप इसलिए आप आशीर्वाद दे दो और आपके आशीर्वाद मुझे रक्षा करेगा जरूर। उस समय कौशल्या तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, पूजा पाठ करवाया, स्वस्ति वचन उनके द्वारा करवाया, यज्ञ किया और सब ब्राह्मणों को ब्राह्मणों से विनती की कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दो आप लोग ताकि 14 साल ठीक तरह से बिता पाएगा। और बोला उन्होंने बेटे मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, 14 साल मैं सदा तुम्हारे स्मरण करती रहूँगी, इस तरह बोलकर उन्होंने विदा किया, विदा लिया। और जब सीता आ गई उधर, उस समय सीता अंदर थी विष्णु की पूजा कर रही थी पूजा रूम में, जब वापस आने के बाद उनको भी बताया रामचंद्र ने क्या हुआ। तभी उन्होंने बोला सीता को, हंसी थे मेरी माँ की सुरक्षा में तुम रहो, 14 साल तो ये क्षण जैसे हो जाएगा, जल्दी ही जल्द मैं आ जाऊँगा, ऐसे बोले रामचंद्र जी। सीता उनकी ओर मुड़कर देखा, क्या बोल रहे हो आप मुझे इधर महल में रखकर आप निकल जाओगे जंगल, ये क्या बात है, एक पत्नी जो होती है उसको पति के साथ रहना ही स्वर्ग है, पति के बिना रहना नरक है, अगर मैं जंगल में रहूंगी, मैं पहाड़ों को देखूंगी, पेड़ पौधों को देखूंगी, कोयल गाएंगे उसको सुनूंगी, नदियों बहने वाली नदियों को देखूंगी, ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण करेंगे उसको सुनूंगी, इस तरह के बहुत सुंदर वातावरण में मैं बहुत आनंददायक जीवन है। आप जब साथ में रहेंगे मेरे साथ तो मुझे वही मेरा स्वर्ग है। और वो बोली सीता, मेरे ज्योतिष के अनुसार, मेरे ज्योतिष लोगों ने बोला कि जंगल वास भी मुझे होगा मेरे जीवन में। तो अभी उनकी बात सही हो गया, अभी इसे लग रहा है कि मुझे आपके साथ जंगल आना ही श्रेष्ठ है, अरण्य में आकर आपके साथ रहना ही। लेकिन रामचंद्र बोले कि देखो सीते, समझ तुम समझ नहीं पा रही हो, जंगल में बड़े बड़े प्राणी होते हैं, जैसे शेर होते हैं, बाघ होते हैं, वो भूखे रहते हैं, किसी भी आदमी के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो तुमको जंगल में रहना बहुत बड़ा खतरनाक जीवन है। सोने के लिए अच्छे मुलायम बिस्तर नहीं है, खाने पीने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, कंदमूल इत्यादि को खाना पड़ेगा हमें। तो उस तरह की अवस्था में मैं अपने आप को संभाल पाऊंगा, लेकिन तुमको मैं कैसे संभाल पाऊंगा तुमको साथ में लेके जाकर। तो इसको सुनकर सीता जोर से रोने लगी और रामचंद्र जी को प्रेमावेश में आकर डांटने लगी। उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी ने तुम जैसे आदमी को कैसे मुझे शादी में दिया पता नहीं, जो वाइस अपनी पत्नी को बोल रहा है कि 14 साल तुम अलग रहो मेरे से। तो इस तरह बोलकर उनको डांटने लगी। वो बोली, देखो अगर मुझे आप छोड़कर चले जाओगे जाएंगे तो मैं आग में प्रवेश करके मर जाऊंगी, नहीं तो विष पीकर मर जाऊंगी, नहीं तो नदी के अंदर डूब जाऊंगी, आप जिंदा नहीं देखोगे जब मैं वापस लौटोगे। तभी रामचंद्र ने मुस्कुराया, बोला कि सीते तुम्हारे मन की बात जानने के लिए मैंने परीक्षा ली तुम्हारी, तुमको छोड़कर मैं एक क्षण भी नहीं रह पाऊंगा मेरे जीवन में, लेकिन मेरी इच्छा था कि आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने पूछा। तो अगर आपकी मन में इतनी इच्छा हो, तीव्र हो, तो आपको कैसे छोड़कर जाऊंगा, मैं जरूर से साथ में लेके जाऊंगा। तो ऐसे बोले। तो उसके बाद लक्ष्मण आ पहुंचे उधर। भगवान ने बोला लक्ष्मण को, लक्ष्मण देखो मैं जा रहा हूँ जंगल 14 साल के लिए, मेरे माता का ख्याल रखो, बाकी 2 माताओं को भी ख्याल रखो, और सब शांति रखो इधर महल में, और तुम उनके साथ रहकर सबको सुरक्षा प्रदान करो, मैं जाकर आ जाऊँगा। लक्ष्मण बोले सुरक्षा के लिए मेरी जरूरत क्या है, इधर है ना भरत है, शत्रुघ्न है, वो लोग देखेंगे, लेकिन मैं आपके साथ मैं आऊँगा, मैं आप दोनों के सामने जाऊँगा, सीताराम के सामने जाऊँगा, और अगर कुछ कतरा हो तो कतरा मैं सामना करूंगा, और आप दोनों किसी भी तरह के चिंता ना होकर आप प्रकृति की शोभा को देख सकते हो और आनंद लूट सकते हो, कुछ चिंता नहीं रहेगा आपको। इतना ही नहीं, जंगल वास में अरण्य में वास करते समय में जाकर कंदमूल फल इत्यादि को इकट्ठा करके लेके आऊंगा आपको भोजन के लिए। रात को आप लोग रात्रि के समय सोते समय में आपकी गोल गोल आपको घूम कर मैं क्या करूंगा, आपको हाथ में एक बाण और धनुष लेकर आपकी सुरक्षा प्रदान करूंगा। इस तरह मेरे बिना आपको अकेले कैसे भेज सकता हूं मैं, कभी हो नहीं सकता, मैं जरूर आऊंगा। तो रामचंद्र ने सोचा कि इसको इसके हट जो है इसको मानना ही पड़ेगा हमें। बोलते हैं ना जैसे बाल हट और स्त्री हट और ये लक्ष्मण हट है। तो भगवान ने उनको भी लिया। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, ये रामचंद्र जी की बात जब आता है इसमें आश्चर्य की बात क्या है, अपने धर्म को वो खुद पालन किया, पिताजी के पितृ वचन को पालन करना चाहे करके। लेकिन सीता की बात जब आया, बोला सीता तुम टार जाओ। ऐसे नहीं बोला कि सीता पति के साथ आना पड़ेगा तुमको, अगर तुम नहीं आओगी तो कौन कुकिंग कौन करेगा मुझे, अच्छी तरह कहा नहीं पाऊंगा, जब मैं सिंहासन में बैठूंगा तुम साइड में बाजू में बैठोगी रानी के रूप में, अब मैं जंगल जा रहा हूँ, जितना तकलीफ उठाऊंगा तुम भी तकलीफ में एक तुमको भी थोड़ा भाग लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, उनको ऐसा नहीं बोला, वो बाकी सब लोगों की सुख सुविधा के बारे में सोचा और अपने तपस्या के बारे में सोचा रामचंद्र जी। ऐसे बहुत कुछ बोला जा सकता है रामचंद्र जी के बारे में, उनके चरित्र बहुत अद्भुत चरित्र है। लेकिन भगवान रामचंद्र और कृष्ण के बीच में संबंध बताने वाली एक छोटी कथा बताऊंगा आपको। एक दिन की बात है, जैसे वृंदावन में भगवान जो भी करते हैं उसको देखने के लिए सब लोग आते हैं। देखिए जब कृष्णा स्वर्ग में गए थे अदिति के कुंडल को देने के लिए इंद्र के पास, तभी सब स्वर्गवासी सब बाहर आकर देखने लगे कृष्ण के मुखारविंद को, देखने के लिए आ गए। इस तरह जब कृष्ण मथुरा में प्रवेश किया, सब लोग छत के ऊपर चढ़ गए, ऊपर से फूल की वर्षा करने लगे, उनके सुंदर दर्शन करने लगे। इस तरह कृष्ण जिधर भी जाते थे उनकी खूबसूरती, उनकी प्रकाशमान तेजमय शरीर, इसको देखने के लिए अनेक लोग आ जाते थे ऐसे। इस तरह भगवान के एक ही एक छोटे छोटे क्रिया भी बहुत अद्भुत देखे गए हैं। जैसे शास्त्र में अद्भुत कर्मण है बोलते हैं, क्योंकि क्यों अद्भुत है, भगवान जो भी करते हैं वो अद्भुत है। जैसे हमारे NBCC मंदिर में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे, है ना, उसको रिबन काटकर उद्घाटन करने के लिए उस हाल की, तो एक लड़का बोला कि प्रभु जी प्रेसिडेंट तो आज काटने वाले हैं रिबन, मैं कल ही प्रवेश कर लिया वो रूम में, क्योंकि हम लोग रूम को तैयार किया, सजाया हमने। तो मैंने बोला तुम रूम ऑलरेडी चले गया कल, लेकिन तुमको फोटो निकलने वाला कोई नहीं है तुम्हारा, है ना, एक दिन जल्दी चले गए तुम अंदर। लेकिन जब वो रिबन काटते हैं इतना फोटो क्लिक होता है, पेपर में आता है, क्योंकि वो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, करेक्ट है ना। इस तरह अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कुछ भी करते हैं, वो कार्य छोटा कार्य भी हो लेकिन वो बहुत बड़ा माना जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योगा किया, आपने देखा एक बार टीवी में आया था योगा किया उन्होंने, तो एक लड़का बोला रहे हम योगा रोज करते हैं, कोई फोटो नहीं क्लिक करता है वो करते हैं क्लिक करते हैं, क्योंकि वो कौन है, प्रधानमंत्री है। इसलिए इस तरह भगवान जब करते हैं कुछ लीला, अगर भगवान सोते हैं उसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं ना। जैसे रंगनाथ जी सो रहे हैं दक्षिण भारत में, किधर, श्रीरंगम में, वो लेटे हैं भगवान, तो उसको देखने के लिए हजारों लाखों लोग आते हैं, क्योंकि उनका सोना भी सुंदर है। जब सोते हैं उनका कमल नयन है, योग निद्रा में है भगवान, उनके आजान बाहु शरीर बहुत सुंदर है। ऐसे ही रामचंद्र जी का भी एक सुंदर श्लोक है, श्री रामम दशरथात्मजम प्रमेयम सीतापतिम रघुकुलान्मय रत्न दीपम आजान बाहु अरविंद दलायताक्षम रामम निशाचर विनाशकारम नमामि। इसका मतलब क्या मालूम है, श्री रामम दशरथात्मज अप्रमेयम, दशरथ के आत्मज हैं, उनके पुत्र हैं, और अप्रमेयम उनकी शक्ति का सीमा ही नहीं है। और क्योंकि ये उनका नाम क्या है, मारिच, मारिच ने बोला रामचंद्र की शक्ति एक समुद्र के बराबर है, और उनके समुद्र में निकलने वाले बड़े बड़े लहरें जो होते हैं ना, टाइड, टाइड को क्या बोलते हैं, लहरें मतलब वेव, टाइड का मतलब वो बड़ा लहर है, सुनामी बोल रहे हैं वो वो समुद्र में निकलने वाले बड़े लहरें जो होते हैं ना, वो उनके बाहुबल है, इस तरह बोला उन्होंने। और जो समुद्र में ये बड़े बड़े शार्क कूदते हैं, इस तरह भगवान के तीर से ये निकलता है, बाण निकलता है इसे, तो इस तरह भगवान की शक्ति का सीमा ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं अप्रमेय। सीतापतिम रघुकुलान्मय रत्न दीपम, रघुकुल वंश का वो रत्न है। आजानुबाहु, आजानुबाहु का मतलब है उनका शरीर लंबा है, एक हरा पहाड़ के बराबर है। अरविंद दलायताक्षम, उनके मुखारविंदों में जो कमल है, जो उनके आंखें हैं वो कमल के पंखड़ियों के बराबर है। और निशाचर विनाशकारम, रात में लोगों को तकलीफ देने वाले पिशाच, भूत, प्रेत, असुर गण जो होते हैं, इत्यादि लोगों को मारने वाले विनाशकारम, ऐसे इस तरह हमारे भी अनर्थों को मारने वाले, मिटाने वाले, ऐसे रामचंद्र जी को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ ऐसे। तो इस तरह कृष्णा भगवान जो है जब सोने वाले हैं रात को, जब छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, तब लेटे हैं बिस्तर में लेकिन सो नहीं रहे हैं, तो उनके उनके ऊपर एक ब्लैंकेट डालकर यशोदा मैया उनको सुलाने की प्रयत्न कर रही है। हमारे जानव माता जी के घर में एक राधा श्याम सुंदर है, तो उनको सुलाने के लिए वो लोग एक गीत गाते थे, मुझे याद आ रहा है अभी। वो गाती थी, सो जा सो जा तेरी मैया सुलाती है, चंदन के बन पलना, पलना जानते हैं ना, पलना रेशम की बनी डोरी। तो वो पलना बनाया है चंदन के लकड़ी से और डोरी बना है रेशम से, और इस तरह से सो जा करके आप लोग समझ जाइए किसको किसको सुला रहे हैं किसको सुला रहे हैं अभी, नंदलाल को, हाँ कृष्ण को सुला रहे हैं। तो इस तरह उनके घर में वो गाते थे रात को। इस तरह यशोदा मैया भी उनको बिस्तर में डालकर सोने सुलाने के लिए कुछ तो गाना गा रही थी, लेकिन कृष्ण सो ही नहीं रहे थे, आंख पूरे खुले थे। तो तभी यशोदा ने बोला कि मैं तुमको कुछ ऐसे कहानी बताऊंगी, कहानी सुनते सुनते तुम सो जाओ। इस तरह बोलकर उन्होंने कुछ कहानी शुरू की जो आप लोग जानते हैं। उन्होंने बोला एक था राजा हिरण्यकशिपु, उसका बेटा था प्रहलाद, ऐसे और कृष्ण सुनते रहे। जब नरसिंहदेव की बात आया तभी कृष्ण मुस्कुराने लगे, बोले कि ये तो कहानी मुझे पहले से मालूम है, बोला उन्होंने। अरे पहले से मालूम है तो अंत में बोलते हो, तुम पहले क्यों नहीं बोला, ठीक है मैं और एक कहानी बताऊंगी, बोला। तभी उन्होंने रामचंद्र की कहानी बताया उनको। सब लोग पीछे दोहराएंगे, रामो नाम बभुवा, ऐसे बोले कृष्ण। तदबला सीतेति, तं पितुर्वाच पंचवटी वने विहरतः। सब समझ गए, सरल संस्कृत है ये, पद्यावली में आता है, रूप गोस्वामी ने लिखा है। वो बोले कि वो तम पितुर्वाच, पिताजी के वचन सुनकर पंचवटी वने विहरतः, सर पंचवटी में जाकर रहे और वन में इधर उधर घूम रहे थे वो हिरण को ढूंढते हुए। तस्य हरत रावण, समझ गया आपने मतलब क्या है। तभी रावण आकर सीता को हरण करके लेके गया। और आगे बोलते हैं, निद्रार्थम जानकी कथमिति हरे हुंकर तक शृण्वत। इसका मतलब क्या है, निद्रार्थम उसको निद्रा में डालने के लिए कृष्ण को, निद्रार्थम जानकी कथम का मतलब है राम कथा जानकी कथा बोल रही थी, हरे भगवान हरि हूं करता है करके बोल रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे, श्रृंगत है। अभी उन्होंने क्या क्या मालूम है आपको, तुरंत कृष्ण जग गए, खड़े हो गए अपने बिस्तर में और जोर से बोला, सौमित्रे क्वा धनुर 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 इति व्याघ्र गिरा पंतुनः, ऐसे बोलते हैं। सौमित्रे बुलाया उन्होंने, सौमित्रे कौन है, लक्ष्मण, सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण है। हे लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष, लाओ मेरा धनुष, तीन बार बोला उन्होंने, लाओ मेरा धनुष। अरे देखो चोर रावण आकर सीता को उठाकर ला रहा है, लाओ मेरा धनुष। ऐसे इस तरह बोलकर एक सिंह जैसे गरजने लगा, गरजने लगे कृष्ण ऐसे। तभी यशोदा के सब सहेलियों ने देखा, यशोदा को पूछा उन्होंने, यशोदे क्या तुम बेटे को सुला रहे हो उठा रहे हो, ऐसे पूछा उन्होंने। तो इस लीला से आपने क्या समझा, कृष्ण राम के भाव में चले गए, क्योंकि वो भी राम ही वही है ना। जब हम पुरुषोत्तम बोलते हैं, रामचंद्र जी हैं, विष्णु हैं, कृष्ण हैं, ये तीनों को किस नाम से पुकारते हैं, पुरुषोत्तम नाम से। तो इसलिए रामचंद्र जी के भाव उदय हो गया उनके हृदय में, तुरंत याद आ गया कि जब मैं गया था ये हिरण को ढूंढने के लिए, उस समय आया रावण सीता को अपहरण करके लंका लेके गया, तुरंत याद आ गया, तुरंत अपने बाण को मांगने लग गया, धनुष और बाण को मांगने लग गया इसे भगवान। इस तरह राम और कृष्ण में एकता को हम देख सकते हैं। अद्वैतम अच्युतमनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। उधर अद्वैतम का मतलब क्या है, कृष्ण में राम में फर्क नहीं है, वो एक ही व्यक्ति है लेकिन अलग अलग रोल भूमिका निभा रहे हैं, समझना आपने। अगर आप कृष्ण के कान में कुछ बोलो, कल जाकर राम को पूछो, उनको भी मालूम होगा, समझना आपने। क्यों, ऐसे व्यक्ति एक है लेकिन अलग अलग शरीर धारण किया उन्होंने। इस तरह भगवान उठने के बाद यशोदा ने बोला, अपने सखियों को बोला, देखो आप लोग बैठे हैं इसलिए वो नाटक कर रहा है, सो नहीं रहा है वो, है आप लोग चले जाओ वो सो जाएगा। सब लोग निकल गए उधर से और यशोदा तुरंत बिस्तर में तुरंत लेट गई और सो गई। कृष्ण ने यशोदा को उठाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, हाथ खींचा, कान खींचा, नाक खींचा, उठ नहीं रही थी, तो सोचा कि आज के लिए माँ सो गई, अभी उठा नहीं पाऊंगा, अभी हमारा ड्रामा से कुछ लाभ नहीं, क्योंकि ड्रामा भी करूंगा तो देखने वाले होना चाहिए ना कोई, अभी कोई नहीं है। इस तरह सोचे, कृष्ण भी तुरंत सो गए। कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद यशोदा धीरे से एक आंख खोल कर देखा उन्होंने, बेटा क्या कर रहा है अभी, तो सो गया था, तुरंत जाकर किचन में चली गई अपने काम करने के लिए। ऐसे इस तरह वृंदावन में लीला को पढ़ते हैं। तो मैं आज एक छोटी लीला को, वृंदावन के एक लीला को आपके सामने प्रस्तुत करना करने की सोच रहा था। यह आता है भागवत के दशम स्कंद के 8वें अध्याय। इधर ये 8वें अध्याय में शुरुआत में एक सुंदर सेक्शन आता है। श्री शुकवाच, पहला श्लोक दशम स्कंद के 8वें अध्याय है। गर्ग पुरोहित राजन यदूनाम सुमह तपाह प्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। ये बता रहे हैं कि गर्गाचार्य उधर आ पहुंचे नंद बाबा के पास। क्यों आए, क्योंकि वसुदेव प्रचोदित है, वसुदेव ने उनको बोला था कि तुम जाओ गोकुल जाओ, नंद महाराज को जाकर मिलो, क्योंकि गर्गाचार्य जो होते हैं वो क्षत्रियों के ब्राह्मण होते हैं, इसलिए वो क्षत्रियों के घर में जाते हैं नामकरण वगैरह करने के लिए। लेकिन ये वैश्य के नंद बाबा के घर में कैसे आए, क्योंकि वसुदेव प्रचोदित है, ऐसे ऐसे बताते हैं। तो वसुदेव ने सोचा कि बच्चे के पैदा होकर 100 दिन के अंदर नामकरण होना चाहिए। इस तरह सोचकर उन्होंने उनको उधर वृंदावन में भेजा उधर। तो उन्होंने बोला कि नंद बाबा उनको मिलते हैं, एक सुंदर श्लोक बोलते हैं नंद बाबा इधर, 14 श्लोक है वो। महत् विचलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवान कल्पते मान्यता पचित। ये बताते हैं, हे गर्गाचार्य, आप जैसे महात्मा पुरुष इस दुनिया में इधर उधर भ्रमण करते हैं, क्यों, गृहिणाम दीन चेतसाम, मेरे जैसे गृहस्थी जो होते हैं दीन चेतस अपने आप को बोलते हैं, क्यों क्यों, इसका मतलब क्या है। आप लोग पूछ सकते हो कि अगर ये गृहस्थ साधु के पास क्यों नहीं पहुंच सकता, साधु को उनके पास आने की क्या जरूरत है, कोई पूछ सकता है ना। इसलिए अपने आप को बोल रहे हैं दीन चेतसाम, हम लोग इतने अपने काम काज में पड़े हैं कि साधु को अपने पास आना पड़ता है, हम लोग उनके पास जा नहीं पाते हैं। इस तरह नंद बाबा अपने आप को बोल रहे हैं ऐसे, और बोल रहे हैं कि निश्रेयसाय, इस तरह बताते हैं उनको, साधु महात्माओं को कुछ लाभ नहीं है प्राप्त करने के लिए जाते हैं उनके पास, सिर्फ उनको भलाई करने के लिए जाते हैं। देखिए, ये गाय दूध देती है आपको भलाई करने के लिए, खुद कुछ डिमांड नहीं करती। पेड़ फल देता है दूसरों को लाभ देने के लिए, नदी पानी देता है दूसरों को लाभ प्रदान करने के लिए, है कुछ नहीं अपने लिए कुछ नहीं लेता है इस तरह। इस तरह महात्मा लोग भी इधर उधर घूमते हैं बाकी लोगों की भलाई करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे कि कुछ लोग साधु लोग हैं जो मंदिर के बाहर लाइन लगाते हैं, आपने देखा होगा, ये हाथ में एक भिक्षा पत्र लेकर तो पैसा का याचना करके इकट्ठा करते हैं, लेकिन पैसा मिलने के बाद सिगरेट फूंकते हैं, इस तरह है। तो प्रभु जी बोला करते थे कि साधु का कपड़ा इसलिए नहीं पहनना चाहिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, लेकिन साधु को समुदाय के लोगों को कुछ प्रदान करना चाहिए, और सब चीज जो भी हम प्रदान करते हैं उनमें से श्रेष्ठ चीज देने योग्य चीज क्या है, लोगों के हृदय में भगवान के लिए कोमल भावना को जागृत करना चाहिए, प्रेममय भावना को। ये अंतिम सीढ़ी है धर्म में अनेक सीढ़ी है, लेकिन अंतिम सीढ़ी क्या है, अगर किसी के हृदय में भगवान की ओर प्रेम लग गया तो वो भगवान के बारे में स्मरण करता है, चिंतन करता है, उनका नाम लेता है, कथा पढ़ता है, कथा का स्मरण करता है, कथा में उनका चित्त आविष्ट हो जाता है। आविष्ट चेता नभवाय कल्पते, इस तरह बताते हैं, श्रृण्वन् गृणन् संस्मरयन् चिंतयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियाशीलस्त्वच्चरणारविन्दयोर् आविष्ट चेता नभवाय कल्पते। देखिए इधर बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सुनेगा भगवान की कथा, श्रृण्वन् गृणन् भगवान का नाम लेता है, कथा सुनता है, संस्मरण तो वो स्मरण भी करता है, दूसरों को स्मरण कराता भी है, रमता है रमाता है, दोनों करता है इसे। तो क्या होता है, नामानि रूपाणि च मंगलानि ते, क्या करना चाहिए, नाम रूप गुण लीला इत्यादि का इस तरह स्मरण करना चाहिए, और क्रियासु यस्त चरणारविंदे, और भगवान की दिव्य सेवा में लगता है। आविष्ट चेता, उसका चित्त आविष्ट हो जाता है इन चीजों में, न भवाय कल्पते, उसको पुनः इस भवसागर में डुबकी लगाकर भवसागर में डूबकर वापस पुनर्जन्म नहीं लेना होता, ऐसे बताते हैं। इसलिए कभी 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 ऐसे होता है कि अगर कुछ कहीं तो सुना मैंने, कोई बड़े कहीं एक साधु को टहलने के लिए कुछ गृहस्थ भक्त ने एक आउट हाउस बनाया था, अच्छा आउट हाउस बनाया था, अच्छा एसी रूम बनाया था, वो साधु को टहरने के लिए व्यवस्था कर दिया, तो वो टहरते थे उधर आकर वो कुछ प्रचार काम के लिए, तो कोई कभी कभी जो शादीशुदा लोग हैं वो लोग डोनेशन दे देते हैं, और वो अपने सिनेमा देख रहे हैं घर में बैठ कर, हैं सिनेमा देख रहे हैं, अपने बिजनेस देख रहे हैं, धंधा देख रहे हैं, और साधु के लिए टहरने की व्यवस्था दी है उन्होंने, साधु को भी ऐशोराम, उनको भी ऐशोराम। ये सही मार्ग नहीं है। सही मार्ग क्या है, साधुओं को कर्तव्य है समुदाय के लोगों को इस बात के ऊपर उनको समझाना है, क्या बात के ऊपर, एक श्लोक बोलेंगे, आप लोग दोहराइए, धनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति मानम्। भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, देखिए बता रहे हैं कि जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्, जनता क्या करता है, विमुखस्य दैवात, तो भगवान से विमुख हो गए हैं, और इसका नतीजा क्या निकला, अधर्मशीलस्य, वो क्या बन जाते हैं, अधर्मशील। और जब अधर्मशील बनते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है, सुदुःखितस्य, वो बहुत दुख में पड़ जाते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। अब इनको बोलना चाहिए तुमको दुख क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि तुम अधर्मशील हो गए, तुम अधर्मशील क्यों हुए, क्योंकि कृष्ण से विमुख हो गए, तो क्या करना आपको, अभी कृष्ण की ओर मुड़कर देखना बस, कृष्ण की ओर मुड़कर देखो बस, सब तरह की अधर्मशीलता निकल जाएगा, कर्मपरायण हो जाओगे तुम। ऐसे शास्त्र बताते हैं कि भगवान की अंतरंग शक्ति आध्यात्मिक दुनिया एक आग के बराबर है और भौतिक दुनिया धुआं के बराबर है। तो हम लोग अभी भौतिक दुनिया में रहते हैं, धुआं से तकलीफ ही होता है हमें, नाक में चला जाता है, आंखों में चला जाता है। इसलिए गांव में जब चूल्हा जलाते हैं लोग, आग जब जलाते हैं ना, आग शुरू करो, शुरुआत में तो धुआं निकलता ही है जरूर। तो धुआं को निकालने के लिए क्या करते हैं मालूम है आपको? हाँ, एक फूंकनी, फूंकनी मालूम है आपको, एक लंबा होता है फूंकनी। तो फूंकनी को किधर डालना चाहिए? धुआं के ऊपर डालना चाहिए, चूल्हा के अंदर डालना चाहिए? किधर डालना चाहिए? हाँ हाँ, अगर हम धुआं के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? हाँ, धुआं के ऊपर डाल के फूंक करो, सारे कमरे के लोगों तक पहुंच जाएगा वो। अब सब लोगों का आंसू आएगा, आंखों से आपके ऊपर चिल्लाएंगे सब लोग, है ना, अरे मूर्ख क्या कर रहे हो, हम सबको तकलीफ दे रहे हो। इस तरह इस दुनिया की तकलीफ धुआं के बराबर है। अगर हम इस दुनिया के तकलीफों को सुलझाने में लग जाएंगे, खुद को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ, ये किसके बराबर है? धुआं को फूंकने के बराबर है। अगर हम इस दुनिया के धुआं को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? सीधा फूंकनी डालना चाहिए, किधर? आग के अंदर। वो क्या है? आध्यात्मिक दुनिया में रखना चाहिए हमारा सीधा अटेंशन, फोकस। और उसको करो, ऐसे इतना आग बढ़ जाता है, धुआं खत्म हो ही जाता है पूरा। इस तरह भगवान के ऊपर जब ध्यान देते हैं, नाम अच्छी तरह करना, कथा का श्रवण करना, भगवान में समाधि लगाना, ये सब करने से क्या होता है? भगवान की दिव्य सेवा में जुड़ना, ये सब करने से हमारे भक्ति की, भक्ति का प्रभाव जब ज्यादा बढ़ता है ना, तो खुद भी हम, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हम शांत हो जाते हैं और दूसरों के लिए भी कुछ तकलीफ नहीं है, समझे ना आपने। इसलिए हमें फूंकनी किधर डालना चाहिए? चूल्हा के अंदर। इस तरह आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए। वही किया था गजेंद्र ने, तकलीफ था उनको पांव में, किसने पकड़ा था? मगरमच्छ ने पकड़ा था, लेकिन मगर के साथ थोड़ा लड़ाई किया, ये फूंकनी को लेकर धुआं को फूंकने के बराबर है, ट्राई किया, क्या बच पाया? नहीं। इसलिए क्या किया? हाँ, अभी सोचा कि अभी भगवान की ओर मुड़कर प्रार्थना करने लगा, भगवान की आचना करने लगा। भगवान जब शुरुआत में बोला भगवान को शरीर को बचाओ बोला, बाद में जब भगवान आ पहुंचे उधर, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, शरण जब लिया ना, तभी बोला भगवान को एक श्लोक बोला उस टाइम, जिजीविषे नाहमिहामुयाक्यम अंतर्बहिश्चावृतयो भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। देखिए क्या बोलते हैं, जिजीविषे न बोलते हैं, मुझे रहने की इच्छा नहीं है, बहुत सुंदर श्लोक है, जिजी विषय न अहम, न अहम का मतलब है मैं इच्छा नहीं करता हूं, बोलते हैं नाहम इहाम याकिम अंतर्बहिष्चा, इस श्लोक में भी नहीं, स्वर्गलोक में भी नहीं, ऐसे बता रहे हैं। और क्योंकि मेरा अंदर और बाहर शरीर एक तरह का तमोगुणी प्रभाव शरीर है, ये हाथी का शरीर, क्या लाभ है शरीर को रखकर? अगर आप आएंगे मगरमच्छ को मार देंगे, मुझे बचा देंगे, मैं इस दुनिया में जन्म मृत्यु का चक्कर काटता रहूंगा मूर्ख होकर। इसके बदले अच्छा है कि आप मुझे इधर से उठा लो, अपने वैकुंठ धाम में लेके जाओ, नित्य निरंतर आपकी सेवा में लगा लो, उस दुनिया से कभी वापस नहीं लौटना पड़ेगा हमको, इस तरह प्रार्थना करते हैं वो। तो इस तरह लोगों के अंदर भगवान और नाम और शास्त्र इत्यादि के ऊपर श्रद्धा को जागृत करना और धीरे धीरे उनको इस स्तर पर लाना कि कैसे भगवान भी हम जैसे एक व्यक्ति हैं, लेकिन वो हम आत्मा हैं, भगवान परम आत्मा है, और जीव भी आकर्षक है क्योंकि जीव भी भगवान का एक अंश है। इस तरह भगवान के बारे में समझाकर जीव और भगवान के बीच में जो प्रेममय संबंध है, उस संबंध को लोगों के हृदय में स्थापित करना ही हमारे संस्था का मूल लक्ष्य है। तो इस तरह ये साधुओं का कर्तव्य है कि साधु लोग इस दिव्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाए। साधु का इतना ही मतलब नहीं कि भगवे कपड़े पहने हुए लोग साधु हैं। जो भी व्यक्ति के हृदय में भगवान के भक्ति और शास्त्र के ऊपर श्रद्धा जागृत हो गया वो साधु हैं। ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं उनके तात्पर्य में। इसलिए हरेक भगवान के भक्त साधु का कर्तव्य है कि लोगों को जाकर इस संदेश को दे और उनको जगाए और भगवान के भक्ति में जोड़े। इस तरह उनकी प्रशंसा करते हैं नंद बाबा इस तरह। लेकिन ये कारण क्या है, अभी होस्ट कौन है, नंद बाबा हैं, गर्गमुनि आ रहे हैं। अगर होस्ट जो है मजमान बोलते हैं ना, मजमान यजमान, यजमान बोलते हैं, यजमान यजमान जो होते हैं उनको, और यजमान और मेहमान, मेहमान कौन है, गर्गमुनि है, और यजमान कौन है, हाँ। तो यजमान को गर्व नहीं होना चाहिए, हैं बता रहे हैं। तो यजमान को अगर गर्व होगा तो जो गर्गमुनि की आगमन से उनको लाभ नहीं होगा कुछ, हैं। इसलिए वो जानबूझकर नंद बाबा ऐसे एक नम्र स्थान को लेकर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं दीन चेतस हूँ, हैं, हम लोग दीन हैं। लेकिन असली रूप में देखा जाए तो भगवान कृष्ण उनके बेटे हैं, हैं। तो कितने पहुँचे हुए आत्मा हैं नंद बाबा, प्रेमावेश है उनके हृदय में, जिसकी पूजा उद्धव जी भी करते हैं बाद में, लेकिन उनके उनके हृदय में इस तरह की नम्र भावना को हम देख सकते हैं। तो इस तरह ही अध्याय में नामकरण होता है भगवान के, नामकरण होने के बाद एक लीला आता है। लेकिन और 10 मिनट जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये मृद भक्षण लीला आता है 32 से 45वां श्लोक तक, 8वें अध्याय में दशम स्कंद के। ये कदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। देखिए ये एकदा एक बार, हाँ, क्रीडमानास्ते सब गोप बालक खेल रहे थे वृंदावन में। राम आद्या का मतलब है बलराम, कृष्ण और बाकी गोप, गोपदार कहा सब लोग। और अचानक कुछ गोप आए यशोदा के पास, आकर एक शिकायत किया उन्होंने, कृष्णो मृदम भक्षितवान, मृदम का मतलब मिट्टी, कृष्णो मृदम भक्षित, कृष्ण ने मिट्टी खाया, हम लोगों ने देखा इस तरह। इति मात्रे न्यवेदयन, इस तरह उन्होंने माता यशोदा को एक शिकायत किया उन्होंने। देखिए जब भगवान माखन चोरी करते थे घर घर में जाकर, अलग अलग घर में जाकर, तभी भी शिकायत करती थी अनेक गोपियां आकर यशोदा से, तब यशोदा उनके शिकायत को सुनकर हंसती थी, उनको हंसी आता था, बोलती थी और बोलो और क्या किया मेरा बेटा और बोलो ऐसे सुनती थी वो, और अलग अलग लोग अलग अलग शिकायत लेके आती थी। तो एक बार, एक समय की बात है, कृष्णा और उनके गोप बालक सब चले गए एक घर के, उसको क्या बोलते हैं, वरांडा होता है ना घर के सामने, क्या बोलते हैं उसको, वरांडा बोलते हैं, ठीक है। वो वरांडा था, निकट ही एक पेड़ था, पेड़ के पीछे छुप कर भगवान योजना बना रहे थे कि इस घर के अंदर हम घुसेंगे, अभी देखो ये गोपी घर के पीछे जाएंगे गाय को देखने के लिए, तो हम लोग घर के अंदर घुस जाएंगे और हम चोरी करेंगे माखन। इस तरह बातचीत जो कर रहे थे, उस बातचीत को उस घर की गोपी ने देख लिया, तो खिड़की से वो गोपी ने चिल्लाया इस गोपी को, हे गोपी देखो तुम्हारे घर में, घर को लूटने के लिए आ गए सब चोर, ऐसे बोला। और कृष्णा और गोपों को इतना शर्म आया, उधर से भाग गए सब लोग, तो अगले गली में भागकर खड़े हो गए उधर। तो उधर एक गोपी थी, वो कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, जिस तरह उसको इच्छा होती थी कि यशोदा को इतना सुंदर पुत्र बालक प्राप्त हुआ, ये कृष्ण मेरे बालक होगा तो कितना अच्छा होता, इस तरह वो सोचती थी। तो उसने कृष्ण को बुलाया, इधर आओ, और अपने हाथ में बड़ा एक लोना चकोला दिखाया। तो उधर खिलाते हैं ना उधर पंढरपुर में विठल को, ऐसे दिखाया उनको। तो सब गोप बालक बोले, उनके उनके मुंह में पानी निकलने का, बोले हे कृष्ण देखो वो तुमको इतना बड़ा माखन खिलाने के लिए खुद ही इधर ही है वो। तो कृष्ण ने इधर देखा उधर देखा, बोला कि मुझे नहीं चाहिए, बोला उनको नहीं चाहिए, तुमको तो माखन बहुत पसंद है, क्यों नहीं चाहिए? वो बोला हम कसरत करके हम ले लेंगे, बोला और उनका कसरत क्या है? चोरी करना वही कसरत है उनका। क्यों? उन्होंने बोला ऐसे, मित्र ने पूछा अरे काना तुमने क्यों नहीं लिया, वो दे रही है क्यों नहीं लिया? वो बोला देखो हम वामन देव करके एक छोटा रूप लेकर जाकर हाथ फेर कर हमने थोड़ा ले लिया, किन से? बलि महाराज से। अभी तक लोग हमको डांट रहे हैं कि बोल रहे हैं कि उसको धोखा दे दे धोखा दे दे, लोग बोलते हैं, इसलिए हम हाथ फेरना ही छोड़ दिया हमने अरे हम हमारा कसरत करके हम ले लेंगे, हम ऐसे बोला उन्होंने। इस तरह है कृष्ण अनेक लीला करते हैं, हर दिन यशोदा को रिपोर्ट मिलता है, अलग अलग कंप्लेन मिलता है, लेकिन यशोदा के पास आकर कंप्लेन करने वाले भी वो गाना गाते हैं। कैसे गाते हैं? ताये यशोदा वंदन आयर कुलतु दिता मायन गोपालन से युम। ये तमिल में गीत है, आप लोग तमिल जानेंगे नहीं, मैं मतलब बता देता हूँ आपका वो क्या बोल रहे हैं, ये गोपियां बोल रहे यशोदा को, है यशोदे तुम्हारे गाना जो होता है उसकी सुंदरता इतना इतना खूब खूबसूरत है, उसकी सुंदरता को देखकर अनेक लोग मोहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। और जब हमारे घरों में आता है, हमारे आंखों में मिट्टी डालकर कैसे वो चोरी करता है हमें पता नहीं चलता। तो ये गोपी बोल रही थी, ये हमारे घर के पीछे आया था तुम्हारा बेटा, आकर बछड़ा को टाइम से जल्दी छोड़ दी, निकाल दिया और रस्सी को निकाल दिया, तो बछड़ा जाकर दूध पीने लगा, तभी मुझे पता चला, अरे 6 बजे दूध निकालते हैं हम, ये 5 बजे निकाल दिया उसको। तो तुरंत जाकर मैं भाग गई उधर, अपने पति को चिल्लाकर बुलाया, पति भी आ गए और मैं भी भाग गई, घर में कोई नहीं था अंदर, तो कृष्णा और उनके काना और उनके मित्र सब अंदर टूट पड़े और सब माखन चोर करके भाग गए ऐसे। इस तरह कैसा करता है, उसके आइडिया कितना आइडिया उसको किधर से मिलता है पता नहीं हमको। इस तरह तो यशोदा को ऐसे ऐसे कंप्लेन करते थे, देखिए अगर आपका कुछ काम कुछ महत्वपूर्ण चीज चोरी हो गया तो क्या आप पुलिस स्टेशन में जाकर गाना गाओ? गया क्या आपका लैपटॉप चोरी हो गया, आपका मोबाइल चोरी हो गया है, आपका गाड़ी चोरी हो गया, हम गा सकते हैं? हम लोग तो रोएंगे हम, है ना। तो लेकिन ये लोग गाना गा रहे हैं क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में कोई बातचीत नहीं करते, क्या करते हैं? गाना ही गाते हैं, कोई चलते ही नहीं है, क्या करते हैं? नाचते रहते हैं, और पानी नहीं पीते क्योंकि सब पानी उधर कैसे रहता है? मधु जैसे रहता है। ऐसा आध्यात्मिक दुनिया का लक्षण बता रहे हैं ब्रह्मा जी बता रहे हैं ऐसे। तो जब ये कंप्लेंट आता था यशोदा को, यशोदा हंसती थी, गोपियां भी हंसती थी उसको सुनकर। इस तरह माखन की जब चोरी हुआ, यशोदा उतना ज्यादा डांटती नहीं थी कृष्ण को, लेकिन जब उन्होंने सुना, इधर ये सुना, कृष्णो मृदम बक्षितवान, कृष्ण ने मिट्टी काया करके जब शिकायत किया बच्चों ने, अभी माता डर भी गई कुपित भी हो गई। कारण क्या है? माखन खाने से कुछ तबीयत बिगड़ता नहीं, लेकिन मिट्टी खाने से तबीयत बिगड़ जाएगा बच्चे का, इसलिए वो डर भी गई और कुपित भी हो गई। तुरंत बुलाया उन्होंने कृष्ण को, सा गृहीत्वा करे कृष्णम, पकड़ा हाथ उन्होंने कृष्ण का, गृहीत्वा, गृहीत्वा का मतलब ऐसे हाथ पकड़ लेना ऐसे, उपालभ्य हितैषिणी, ऐसा नहीं कि वो पकड़ा कुछ मारने के लिए, ऐसा नहीं, हितैषिणी है, हितैषिणी का मतलब है हितचिंतक है, दंड नहीं देने वाली है, दंड देने की कुछ ड्रामा कर रही है सिर्फ उसको डराने के लिए, ताकि भविष्य में वो मिट्टी नहीं खाएगा, है ना। माता होने के कारण प्रेम भी है, देखिए उनके हृदय में दो चीज का स्पर्धा चल रहा है, एक है प्रेम, बच्चे के नन्हे मुन्ने चेहरे को देखकर और गुंगराले बाल और उनके आंख जैसे भ्रमर के जैसे इधर उधर उसको विशंकित क्षण ऐसे बोला गया, विशंकित क्षण मतलब उनके आंखें ऐसे हिलता है भगवान के, उसको देखकर उनकी आंखों में डर है करके देखकर सोच रही है कि मैं दंड नहीं दूंगी। पहले तो अपने हाथ में एक लाठी भी लिया, उनके आंखों को देखकर फेंक दिया उसको, सोचा कि नहीं मेरे बच्चे को लाठी को देकर ही, एक छड़ी को देकर ही वो डर रहा है, अगर मैं मारूंगी तो पता नहीं भागी जाएगा वो, है इसलिए उसको फेंक दिया उन्होंने। तो एक ओर से दंड देने की इच्छा होता है बच्चे को कंट्रोल में लाने के लिए, दूसरी ओर से प्रेम का प्रेम उमड़ रहा है तो बच्चे को चुंबन देने की इच्छा होता है, बच्चे को क्या बोलते हैं उसको, आलिंगन भी सही है, और ये एक शब्द है नहीं मिल रहा है, गोद में लेना भी सही है लेकिन ये एक शब्द है, इसका मतलब क्या है, बच्चे को मनाना, जैसे गोद में लेकर मनाना, उसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं एक शब्द है, ठीक है ये सब शब्द भी ठीक है, समझिए आप लोग अभी इस वजह से हितैषिणी बोला गया, यशोदा भव संभ्रांत प्रेक्षणा क्षम भाषत, यशोदा भव संभ्रांत, भयभीत हो गई, क्या कहा मेरा बच्चे ने, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये बच्चे लोग शिकायत कर रहे हैं मैं काना आओ इधर बुलाऊंगी तो दूसरी दिशा में भाग जाएगा वो, है ना, भागने के पहले पकड़ लिया उन्होंने हाथ को, तुरंत पकड़कर अपने पास ले लिया, अपने गोद में ले लिया उनको, और डांटा भी उन्होंने, अरे काना क्यों तुम मिट्टी खाते हो, मैं तो माखन बनाकर देती हूँ, तुम घर में खाने के लिए मिश्री है, रबड़ी है, माखन है, विविध पेड़ा है, और क्या चाहिए तुमको, ऐसे छोड़कर मिट्टी खा रहे हो तुम, इसे वो डांटने लगी ऐसे, कस्मान मृदम अदांतात्मन, ऐसे बोल रही है वो, अदांतात्मन का मतलब है अरे तुम्हारे मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अदांतात्मन मतलब मन और इंद्रिय तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, हाइपर एक्टिव बोलते हैं, कुछ कुछ माताएं आकर बोलते हैं प्रभु जी मेरा बेटा थोड़ा हाइपर है, थोड़ा शांत करा दो उसको, मैं तुरंत माला निकाल कर दे देता हूँ उनको, माला करने के लिए बोला उनको, क्योंकि जिसका मंदर जिसका मन बंदर जैसा है, बंदर को शांत कराना कठिन है, देखा आपने बंदर कितना, अभी वृंदावन में देखिए ये छोटे छोटे बंदर भी एक डाली से दूसरी डाली में कूदता है, एक पेड़ से दूसरा पेड़, और जो सीलिंग के ऊपर भागते हैं, भागते समय भी घुसते हैं उसके ऊपर भी, दार 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 दार, उनका आवाज अच्छा लगता है उनको, इस तरह, तो ऐसे विचलित हुआ बंदर को शांत कैसे किया जाए, उसके लिए आप देखेंगे एक बंदर है शांत है, कौन है वो, शांति से बैठा एक बंदर, हनुमान जी, करेक्ट, क्यों, क्योंकि वो राम नाम ले रहे हैं, इसलिए इसलिए कोई भी बच्चा को माता लाती है हाइपर बच्चे को, उसको क्या बोलो, माला दे दो, बोलो कि हनुमान जैसे बनो तुम, शांत बनो, ऐसे, तो इस तरह से बोल रही है, कस्मान मृदम अदांतात्मन, अरे अरे काना तुम्हारा तुम देखो तुम किस तरह का व्यवहार करते हो तुम, भवान भक्षितवान रहः, अरे तुम रहः का मतलब है अलग एकांत स्थान में जाकर जिधर कोई भी लोग नहीं है उधर जाकर किसी के आए किसी को दिखाए बिना तुम अपने आप थोड़ा मिट्टी लेकर मुंह में डाल दिया तुम ऐसे, भवंति ताबकाह्येते कुमारास्ते अग्रजोप्ययम्, ये बता रही है कि देखो तुम्हारे सब मित्र बता रहे हैं, तो उसको मालूम था अच्छी तरह, कृष्ण बोलेगा माता को क्या बोलेगा कि ओ मैया वो सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा, ये देखो माता ये सब लड़के क्या चाहते हैं, ये इच्छा करते हैं कि आप मुझे एक छड़ी लेकर मारे, अभी तक ये लोगों ने देखा नहीं, छड़ी आपने बहुत बार ऐसे ऐसे किया लेकिन मारा नहीं, ये बच्चे इच्छा करते हैं कि मुझे एक बार पिटाई मिले और उससे उनको मजाक उड़ाने के लिए मौका मिलेगा, कभी कभी हमारे टीचर स्कूल में एक एक करके बुलाते थे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया तभी उनको ठाक करके उठते थे और ऐसे ऐसे करते थे बच्चे ऐसे कर ऐसे ऐसे तो सब बच्चे हंसते थे बाकी तो टीचर क्या बोलते तुम्हारा टर्न आएगा अभी तुम भी क्यों में हो ना अभी एक एक का टर्न आएगा ऐसे लेकिन बच्चों को क्या है दूसरे के जिस दूसरे को ये मिलता है तभी उनको हंसी आता है ना उनको तो कृष्ण ने वही बोला तो मेरे मित्र चाहते हैं कि तुमसे मुझे एक जब मिलेगा मुझे अब मारोगे मुझे तभी वो लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे मुझे लेकिन यशोदा ने बोले देखो तुम्हारे मित्र झूठ बोलते होंगे हो सकता है लेकिन अग्रजोप्ययम् तुम्हारे अग्रज तुम्हारा बड़ा भाई बलराम अरे वो खुद बोल रहा है इसका मतलब क्या वो थोड़ा सीरियस आदमी है तुम जैसा नहीं है, तुम्हारे मित्र जैसा नहीं है, हा? वो सबसे बड़ा है, ऐसे वो बोल रहे हैं। कृष्ण ने क्या बोला, देखिए इधर बोल रहे हैं, ना हम बक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ना हम बक्षितवान अम्ब, अम्ब का मतलब अम्मा, हा? माता, हे माता मैं मिट्टी काया नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, एकदम बड़ा झूठ सीधा बोल रहे हो। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः बोल रहे हैं कि मेरे साहब, मेरे मित्र सब झूठी बाजी कर रहे हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही, इसमें अगर कुछ सत्य बात हो, समक्षम पश्य मे मुखम, खुद ही मेरा मुख देख लो, ऐसे बता रहे हैं। तो कृष्ण ने क्या सोचा, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो मेरे मैया बोले कि अच्छा तुम मुख दिखाने के लिए तैयार हो गए, इसका मतलब है मुख में कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होता तो आप कैसे मुंह दिखाओगे, इस तरह सोचकर वो छोड़ देगी, ऐसे सोचा उन्होंने। जैसे मैं और सुजीत प्रभु ट्रेन में जाते समय, हम टिकट चेकिंग का आदमी आता है तो हमेशा पूछता है तुम्हारे आई कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ बोलता है, तो मैं पैन कार्ड निकाल कर दिखाता हूँ, लेकिन कभी कभी वो लोग दूर से ही बोलते हैं ठीक है अंदर रख दो, आप लोग साधु हैं नो प्रॉब्लम रख दो, ऐसे। इसके कारण कभी कभी हमारे ब्रह्मचारी दो नाम में टिकट बुक करते हैं, दो और ब्रह्मचारी जाते हैं, उनका क्या है, पैन कार्ड मांगो, पैन कार्ड ऐसे देखा उधर से बोलेगा ना अंदर रख दो नो प्रॉब्लम। कृष्ण ने क्या ऐसे सोचा, वो इसलिए बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम, वो बोल रहे हैं मैया अगर ये लोगों की बात में कुछ सत्यता हो तो मेरे मुंह में मिट्टी मिलेगा ना तुमको, आप खुद ही देख लो, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन मैया यशोदा ने क्या बोला, अच्छा तुम देखने के लिए बोलते हो, क्या हो बेटा देख लेता हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। तो एक बार हमारे ब्रह्मचारियों का ऐसा ही हुआ, उन्होंने बोला आओ इधर दिखा दो आपके पैन कार्ड, तो पैन कार्ड को लिया, सेवन एड उधर सेवन एड है, इधर भी सेवन एड है, तो उधर भी स्पेक्स है इधर भी स्पेक्स है, लेकिन ये थोड़ा और मोटा दिख रहा था, ये ब्रह्मचारी पतला था। उन्होंने बोला कि इधर ये मोटा दिख रहे हैं, वो बोला हमने थोड़ा चतुर्मास किया जिससे हम पतला हो गया तो वो छोड़ दिया उसको उसके बाद, क्योंकि सब ब्रह्मचारी एक समान दिखते हैं ऐसे तो इस तरह कृष्ण को भी उन्होंने क्या किया, माता ने पकड़ा। तो कृष्ण ने सोचा अरे क्या अभी ऐसे हो गया, पकड़ लिया हमको ऐसे। तो इस तरह बोलकर माता ने जब बुलाया तभी कृष्ण ने मुंह खोला। तभी देखिए कृष्ण के इर्द गिर्द सब शक्तियां होते हैं, उनके इर्द गिर्द सब सलाम मारकर सेवा करने के लिए तैयार हैं। कभी कभी आप देखेंगे बड़े धनी खानदान में जन्मा व्यक्ति कोई ऐसे बाहर आता है शाम के टाइम, 10-12 बड़े बड़े कार खड़े रहते हैं उसके बाहर, तो ऑफिस जाने के लिए एक फॉर्मल कार रहता है मर्सिडीज बेंज ऐसा कुछ, और शाम को घूमने के लिए कार रहता है जिसका टॉप नहीं है, ऐसे कार रहता है ना, अलग अलग कार रहता है उसका। जब वो बाहर आता है सब कार के ड्राइवर आ जाते हैं, सर सर युवा आपको ये कार चाहिए, ये कार चाहिए, वो बोलता है ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ठीक है वो कार लेके आओ, वो छोटा कार लेके आओ, जल्दी जाना है हमको, तो ऐसे मांगता है। जिस तरह कार के ड्राइवर लोग एक धनी खानदान में मालिक के पास आते हैं, इस तरह सब भगवान की शक्तियां इर्द गिर्द रहते हैं और उनको सलाम मारकर सेवा करने के लिए आतुर होते हैं, तैयार रहते हैं इसे। इसलिए जैसे एक ऐश्वर्य शक्ति है, एक कृपा शक्ति है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ओम ब्रह्म शक्ति, शिव शक्ति, विष्णु शक्ति, ओम सबकी शक्ति है, विष्णु का शक्ति है, ब्रह्मा जी का शक्ति, शिव का शक्ति है, लेकिन ये सब शक्तियां अंत में भगवान की ही दासियां हैं, सब उनकी सेवा करते हैं इसे। इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, इस तरह इलेक्ट्रिक शक्ति है, केमिकल शक्ति है, काइनेटिक शक्ति है, पोटेंशियल शक्ति है, ऐसे कोटानुकोटि शक्तियां हैं। उसमें प्रधान तीन शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो इस तरह सब शक्ति आ गए उस समय। उस समय ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा अभी ये मुंह खोल कर दिखा रहे हैं, यशोदा के अंदर थोड़ा क्रोध भी आया है, उनके क्रोध को शांत कराने के लिए और कृष्ण के महानता को यशोदा को दिखाने के लिए और भगवान की बात को सत्य बात बनाने के लिए, इसलिए ये ऐश्वर्य शक्ति ने क्या किया, भगवान के पेट के अंदर सारे ब्रह्मांड को दिखा दिया। क्योंकि सब ब्रह्मांड उनके अंदर बसे हुए हैं ना, इसलिए ब्रह्मांड को दिखा। तभी यशोदा ने देखा कि मेरे बेटे के मुख के अंदर देखा, सब सारे ब्रह्मांड थे, सब ग्रह तैर रहे थे, चंद्रमा था, सूर्य था, तारे थे, भूमि भी था, उसके अंदर भी एक यशोदा थी, कृष्ण को देख रही थी, सब देखा उन्होंने ऐसे है। ऐसे बहुत आश्चर्यचकित हो गई वो। और इस तरह हालांकि यशोदा विस्मित हुई इस चीज को देखकर, आगे के श्लोक में आप पढ़ेंगे, एक क्षण के लिए विस्मित हुई। उन्होंने बोला कि हे कृष्ण, मैं तुमको मेरे बालक के रूप में, बच्चे के रूप में मान रही हूँ, लेकिन तुम तो परम ईश्वर हो, क्योंकि सब सारे चीज तुम्हारे नियंत्रण में है। मैं सोच रही हूँ कि तुम यार मेरे बालक को, इस तरह योग माया के बाहर निकल गई यशोदा कुछ एक क्षण, एक तो क्षण के लिए। और कृष्ण ने सोचा अगर ये मुझे ईश्वर करके मानेगी तो मुझे आलिंगन कौन देगा, मुझे गोद में कौन ले लेगा, चुंबन कौन देगा मुझे, है मुझे बालक के रूप में कौन स्वीकारेगा, ये तो मेरे पांव पकड़ेगी है। इसलिए कृष्ण ने तुरंत मुंह करके बंद कर लिया अपने मुंह को। मुंह बंद करते ही यशोदा ने जब देखा उनको, पुनः एक वात्सल्य भाव जागृत हो गया उनमें, और तुरंत कृष्ण को अपने गोद में ले लिया। विश्वास चंद्र ठाकुर बताते हैं, यशोदा ने जब देखा कृष्ण के मुख के अंदर इतने सारे ब्रह्मांडों को, तुरंत दंडवत प्रणाम किया भगवान विष्णु को, नारायण को, ये बोलकर, हे भगवान मेरे बच्चे के पेट के अंदर कुछ व्याधि हो गया लगता है, इतना कुछ दिख रहा, क्या हो गया है, आप तुरंत इसको सुरक्षा प्रदान करो है। इस तरह वो प्रार्थना करने लगी। इससे क्या पता चलता है, भगवान जब अपने ऐश्वर्य भाव को प्रकट करते हैं, जैसे विश्वरूप दर्शन इत्यादि, इससे यशोदा माता का वात्सल्य प्रेम में, वो वात्सल्य प्रेम संकुचित नहीं होता है। ये इसको गाढ़ प्रेम बोलते हैं, एकदम गाढ़ प्रेम है, उसमें कभी भी लेश मात्र भी कम नहीं होता है वो प्रेम। इसके एकदम विरुद्ध वो प्रेम और बढ़ जाता है। जब भगवान ने ऐसे मुख को दिखाया, वो नारायण को प्रार्थना करने लगी कि मेरे बच्चे को बचाओ, ऐसे इस तरह प्रार्थना करने लगी वो। तो इस तरह ये इस अध्याय में ये श्लोकों को लेके जाकर एक सुंदर श्लोक आता है, त्रय्या चोपनिषद विश्च, एक श्लोक आता है। उस श्लोक में बताया गया कि ये तीन वेदों में और उपनिषद में बहुत कुछ ज्ञान दिया गया है, लेकिन कहीं भी, मैं आपको वो श्लोक पढ़कर हम प्रश्न को विराम देंगे। बहुत हाँ, देखियो कितना सुंदर श्लोक है, 10.9.20। नेमं विरिंचो न भवो न शरीर अप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। बताते हैं ब्रह्मा शिव और श्री लक्ष्मी भी, इनको भी इतना कृपा नहीं मिला है जितना कृपा यशोदा को मिला, ऐसे बता रहे हैं। देखिए ब्रह्मा भी भगवान के पुत्र हैं, आत्मज हैं विष्णु के, और शिव जी भगवान के सखा हैं, क्योंकि प्रियस्य सख्युः क्षण संगमेन, ऐसे चौथा स्कंद में आता है। भगवान शिव भगवान के सखा हैं, और भगवान ब्रह्मा भगवान के पुत्र हैं, और श्री भगवान का शरीर का ही एक अंग है, अर्धनारीश्वर बोलते हैं ना, श्री भगवान की छाती में रहती है। फिर भी ये तीनों को इतना कृपा नहीं मिला जितना प्रसादम लेबिरे गोपी यशोदा को मिला, जो यशोदा के बेटे बनकर भगवान स्तनपान किया अपने माता यशोदा से, इतना कृपा ब्रह्मा शिवजी इन लोगों को भी नहीं मिला। एवं संदर्शिता हियंग हरिणा वृत्यवश्यता स्वशे नापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। बताते हैं कि भगवान जो सब लोगों को बांध कर रखते हैं अपने पास और अपने शक्ति से चलाते हैं, ऐसे भगवान यशोदा के हाथ से बंधे गए। क्यों? ये दुनिया को दिखाने के लिए, भक्त वात्सल्यता को दिखाने के लिए भगवान ने इस तरह यशोदा के बंधन में आ गया। आगे ये सर बताते हैं, ये तो अगले अध्याय में आता है, लेकिन इसी अध्याय में भी एक श्लोक है जो जिसमें बताया गया कि यही है नंबर 45 है 10845 त्रय्या चोपनिषद उपनिषद सांख्य योग सात्वतैः उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम। इसका मतलब ऐसा है भगवान कृष्ण की महानता उसके बारे में वेदों में उपनिषदों में सांख्य में और वैष्णव ग्रंथों में बताया गया है, लेकिन यशोदा मैया ऐसे परम सत्य भगवान को अपने पुत्र के रूप में माना ऐसे बताते हैं, क्योंकि वेदों में भगवान का नाम है यज्ञ पुरुष, सांख्य में भगवान का नाम है पुरुष, और योग पतंजलि योग सूत्र में भगवान का नाम है परमात्मा, और पंचरात्र में उनका नाम है भगवान। लेकिन यशोदा को पूछो ये कौन है, वो बोले मेरे मेरा पुत्र है मेरा बेटा ऐसे बोले, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपना बेटा माना, इसलिए कृष्ण ने भी उनको अपने बेटे के रूप में ही पेश आया उनके साथ। लेकिन बाकी लोगों को अगर कोई ज्ञानी को पूछो वो बोलेगा ब्रह्म ज्योति, तो भगवान उनको सिर्फ निराकार ब्रह्म को दिखाते हैं। आप जिस तरह पेश आओगे भगवान से उस तरह भगवान भी आपसे पेश आते हैं। लास्ट में एक छोटा बात बताता हूँ, आप लोग घर में किस तरह बर्ताव करते हो अपने माता पिता भाई बंधु उनके साथ, और ऑफिस जाते समय कैसे आप बर्ताव करते हो, दोनों में बड़ा फर्क है। अभी ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं, जब नौकरी दिया जाता है करते तो हैं, थोड़ा बोझ बढ़ गया तो हम तुरंत बॉस को बोलते हैं, वो बॉस इंसेंटिव कितना मिलेगा, अभी थोड़ा ज़्यादा काम बोल रहे हैं, या तो इंसेंटिव बढ़ाओ नहीं तो काम इतना एक्स्ट्रा काम मत दो, जो हम पहले कर रहे थे उतना ही दो। इस तरह हम मेजर करके काम करते हैं कंपनी में, और जब बॉस चला गया फॉरेन चला गया एक हफ्ते के लिए, हम सोचते हैं कि अभी शांत है अभी थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, कंपनी में ऐसे लोग सोचते हैं ऐसे, और इतना ही नहीं कंपनी में संबंध बहुत फॉर्मल होता है। फॉर्म क्या बोलते हैं हिंदी में, फॉर्मल औपचारिक, औपचारिक होता है उधर संबंध ऐसा होता है, और आपको उधर सायरन जब बजता है तभी ये बनना ये होता है कार्ड पंच करना होता है सुबह और शाम को, सायरन पंच करने के बाद ही निकल सकते हैं आप, है ना। लेकिन घर में आप देखेंगे आपका व्यवहार एकदम विरुद्ध है, घर में आप कभी भी फ्रिज को खोल कर कुछ सैंडविच को लेकर खा सकते हैं घर में, कुछ फॉर्मल कुछ नहीं है। हमारे माता पिता भाई बंधुओं के साथ कैसे हम लोग पेश आते हैं ऐसे, इतना ही नहीं अगर आपके दादाजी पिताजी उनको अस्पताल लेके जाना हो हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलते हुए उनके साथ आप करते हो आप, और आप ऐसा नहीं बोलते हो क्योंकि हमारा स्केड्यूल में नहीं है, ऐसे नहीं बोलोगे आप, स्केड्यूल की बात ही नहीं करते हैं हम, है ना, क्योंकि जब तबीयत बिगड़ता है वो स्केड्यूल बोलकर नहीं बिगड़ता, वो कभी बिगड़ जाता है तबीयत, है ना। इस तरह जिस तरह हम घर में रहते समय हम बोझ दूसरों के बोझ को अपने ऊपर हम लेते हैं, इसको बर्डन ऑफ लव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये प्रेम का बोझ है, है? लेकिन कंपनी जाते समय दैट्स अ बर्डन ऑफ बीस्ट बोलते हैं उसको, है? उधर हम गधे जैसे काम करवाते हैं उधर, लेकिन घर में हमें प्रेम का बोझ है वो। इस तरह हम भगवान के संबंध में भी हमें प्रेम का बोझ लेना चाहिए, जो भी हम सेवा करते हैं सोचना चाहिए कि ये मेरे प्रिय भगवान का सेवा है, क्योंकि मेरे भगवान मेरे हृदय में ही खड़े हैं परमात्मा के रूप में, वो मेरे एकदम बड़े शुभचिंतक हैं। इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपके शुभचिंतक हो सकता है जितना भगवान आपके हृदय में जो है। हमारे लिए भलाई हमको भी मालूम नहीं है, भगवान को मालूम है। इस तरह पृथु महाराज ने बोला, भगवान विष्णु ने पूछा पृथु महाराज को वर मांगो, वो बोले कि भगवान मैं वर नहीं मांगूंगा बोला उन्होंने, क्यों, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाएगा मैं वर मांगने से, गए तो ऐसे कुछ वर मांग लूंगा जिसके कारण बाद में तकलीफ हो जाएगा हमें, क्योंकि हमारे चित्त में कितने विविध तरह के भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए मैं वर नहीं मांगूंगा बोला, लेकिन एक वर मांगूंगा बोला उन्होंने। क्या वर है, आप पिताजी जैसे हैं मैं बेटे जैसा हूं, पिताजी जानता है बेटे के लिए क्या अच्छा है, इसलिए आप जो मेरे लिए अच्छा है वो सोचकर आप ही दो, ऐसे बोला उन्होंने, कितने बुद्धिमान है देखे हैं। इस तरह तो हमें जानना चाहिए कि भगवान जो हमारे पिताजी हैं परम पिताजी हैं हमारे हृदय में खड़े हैं, हमारे बड़े शुभ चिंतक हैं, और सब दिव्य गुणों का भंडार है, और सुंदरता का यश का धन का, वैराग्य का, सब तरह के कल्याण गुणों का वो स्रोत्र हैं और भंडार हैं। तो उनके लिए हम सेवा जब करते हैं तभी प्रेम से पेश आना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता भी हमें छोड़ देंगे मृत्यु के समय, लेकिन भगवान मृत्यु के बाद भी हमारे साथ आते हैं। जब हम अगर कुत्ते का शरीर लेंगे तो तभी भी रहते हैं साथ में, मनुष्य का शरीर लिया तभी रहते हैं। तो हमारे साथ साथ आने वाले एक ही व्यक्ति हैं, अनादिकाल से हमारे साथ हैं, अनंत काल तक रहेंगे हमारे साथ। इसलिए ऐसे भगवान स्त्री, आप स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, आपके सबसे निकट मित्र हैं परमात्मा, क्योंकि हम उस परमात्मा के दिव्य वाणी को सुन नहीं पा रहे हैं, उसी वाणी को एम्पलीफाई करके गुरु बताते हैं। गुरु जो भी बोलते हैं वो परमात्मा का आवाज को वो बढ़ा करके हमको समझ आते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना और प्रभुपाद की किताब पढ़ने के बाद सेवा में जुड़ना, क्योंकि सेवा में जुड़ने से वो पचन हो जाता है जो चीज़ हमने पढ़ा ऐसे। तो बिबाड़ी का कांग्रीगेशन बहुत सालों से है, आप लोग भक्ति में स्थित होकर, मैंने सुना शेद्दी प्रभु से अनेक लोग मंदिर में भी सेवा दे रहे हैं, मंदिर में एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइन भी किए हैं अनेक लोग बिबाड़ी कार्यक्रम से। और मैंने ये भी सुना कि आप में से अनेक लोग प्रचार काम भी कर रहे हैं और नए लोगों को जोड़ रहे हैं। तो आप लोग बिबाड़ी मंदिर के एकदम निकट भी है आपके लिए, कुंज बहरे का मंदिर थोड़ा दूर था तो भगवान निकट आ गए आपके इधर बिबाड़ी से। तो आप लोग जिस तरह पहले से आप सेवा करते आए हो इस तरह आप करते जाइए। मैं साल में एक बार आता हूँ इस तरह एक ही काउंसलर ग्रुप में भक्तों को धन्यवाद देने के लिए और देखने के लिए, अगर कोई नया जुड़ गया भक्ति में तुम्हें उनसे पहचान करने के लिए। तो आपके कांग्रीगेशन तो बहुत सालों से कर रहा है, मैं शिवदेव प्रभु से और जीवानंद प्रभु से विनती करूँगा आप इधर आकर थोड़ा परिचय करा दीजिए भक्तों को। इधर आइए।